हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद आठवां अध्याय श्लोक संख्या 35 एंड 36। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय, नमः पङ्कजमालिने, नमः पङ्कजनेत्राय, नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पथि, गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चनं गौरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद आठवां अध्याय कुंती महारानी की प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा, श्लोक नंबर 35। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। महारानी कुंती कहती हैं, भवेस्मिन् क्लिश्यमानानां अविद्या कामकर्मभि, श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। भवेस्मिन् क्लेश्यमानानां अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन भविस्मिन् क्लेश्यमानानां अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। शब्दात् भविस्मिन् भव अर्थात इसमें कहते हैं इस संसार को और भव कहते हैं भौतिक संसार में। इस भौतिक संसार को भव कहते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा समुद्र है भवेस्मिन, जहाँ पर क्या है क्लिश्यमानानाम। क्लिश्य कहते हैं बहुत सारे कष्ट, एक जीव को इस संसार में अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं और उसका कारण बता रहे हैं। भवेस्मिन क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी, अविद्या अर्थात अज्ञान के कारण, काम यानी इच्छा के कारण, कर्म भी अर्थात सकाम कर्म करने के कारण, और श्रवण अर्थात सुनने से स्मरण अर्थात याद करने, अर्हारे यानी पूजन करने से करिष्यन कर सकता है इति इस प्रकार कीचन अन्य लोग। अनुवाद, और कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बलपूर्वक कहते हैं कि वे प्रत्येक युग में धर्म पंथ की स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं। यह धर्म पंथ भगवान द्वारा निर्मित होता है। कोई भी व्यक्ति नवीन धर्म पंथ निर्मित नहीं कर सकता। जैसा कि कुछ महत्वाकांक्षी लोग करने लगे हैं, वास्तविक धर्म पंथ यह है कि भगवान को परम सत्ता मानकर प्रगाढ़ प्रेम में उनकी सेवा की जाए। जीव को तो सेवा करनी ही है, क्योंकि स्वभावतः वह इसी के लिए बना है। जीव का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है। भगवान महान है और जीव उनके अधीन है, अतएव जीव का कर्तव्य उनकी सेवा करना मात्र है। दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त जीव अज्ञानवश भौतिक इच्छा के कारण इंद्रियों के दास बन जाते हैं। यह इच्छा अविद्या या अज्ञान कहलाती है। ऐसी इच्छा से जीव विकृत विषय जीवन के पर केंद्रित भौतिक भोग के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता है। अतएव जीव परमेश्वर की अध्यक्षता में विभिन्न लोकों में विभिन्न शरीरों में देहांतर करके जन्म मृत्यु के चक्कर में बंध जाता है। अतएव जब तक कोई इस अविद्या की सीमा से बाहर नहीं चला जाता, तब तक वह जीवन के विविध पापों से मुक्त नहीं हो सकता। यही प्रकृति का नियम है। फिर भी भगवान कष्ट भोगने वाले जीवों पर अधिक कृपालु होने के कारण अपनी अहितु की कृपावश उनके समक्ष प्रकट होकर श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन स्तवन आत्मनिवेदन तथा शरणागति से युक्त भक्ति के सिद्धांतों को जागृत करते हैं। उपर्युक्त में से सारी विधियों या किसी एक विधि को ग्रहण करने से बद्ध जीव अविद्या के केंद्र से छूटकर बहिरंगा शक्ति के द्वारा मोहित होकर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। जीवों पर इस प्रकार की कृपा भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान द्वारा प्रदान की जाती है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। कुंती महारानी, भगवान की विभिन्न लीलाएं जो कि बहुत अद्भुत हैं, उनके विषय में बताने के बाद भगवान के जन्म के विषय में विभिन्न महात्माओं के जो मत हैं उनके विषय में बता रही हैं। ये वो मत हैं जो वास्तविक हैं, यानी कि वास्तव में जो महात्मा जन हैं वो भगवान के आने के अनेकों अनेक कारण बताते हैं उनके विषय में। सबसे पहले कुंती महारानी ने श्लोक नंबर 32 में बताया कि चिदाहुरजं जातम् पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रिय प्रियस्यान्वावे मलयस्येव चंदनम्। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आप युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति बढ़ाने के लिए संसार में आए और यादव कुल की कीर्ति बढ़ाने के लिए जिस प्रकार मलयगिरी का चंदन जहां भी जाता है तो मलय पर्वत का नाम आता है, उसी प्रकार क्योंकि आप जहां भी जाते हो तो यादव कुल का नाम उसकी कीर्ति बढ़ती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि आप इनकी कीर्ति बढ़ाने के लिए आए। और आगे बताया कि कुछ कहते हैं अकरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितोभ्यगात् अजस्त्वम् अस्य क्षेमाय वधाय च सुरत्रिषाम्। कुछ ऐसे कहते हैं कि वासुदेव और देवकी की याचना सुनकर, उन्होंने जो तपस्या की थी उनको उसको सुनकर आप देवताओं की रक्षा करने के लिए और देवताओं से जो ईर्ष्या करते हैं अर्थात असुरों को का वध करने के लिए इस संसार में अवतरित हुए। और कुछ ऐसा कहते हैं भारावतारणायन ये भुवो नाव इवो ददौ सीदंत्या भूरि भारेण जातो ही आत्मा भुवाथित। कुछ ऐसे बोलते हैं कि आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस संसार में, क्योंकि पृथ्वी कष्टों जो दुष्टों के अपराधों का भार नहीं उठा सकती है, इसलिए आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर इस संसार में आए हैं। और आज एक अन्य अंतिम मत कह रहे हैं और ये अत्यंत ही सुंदर मत है और वास्तविक बहुत ही सुंदर ये ना बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं भविष्मिन् क्लिश्यमानानां भविष्मिन् यानी इस भौतिक जगत में ऐसे सारे लोग जो भी हैं वे कैसे हैं क्लिश्यमानानां, सब लोग कष्ट भोग रहे हैं। कौन ऐसा है जो सुखी है इस संसार में? यदि किसी से भी आप पूछो, हमें दिखने में ऐसा लगता है कि ये संतुष्ट है ये सुखी है, परंतु इस संसार में कोई सुखी रह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये संसार सुख भोगने की जगह है ही नहीं। यदि किसी राष्ट्रपति से भी पूछा जाए कि आप सुखी हो, तो जन्म से लेकर उसे सदैव बहुत सारे कष्टों का बहुत सारे टेंशन्स का हमेशा सामना करना पड़ता है। भले ही बड़ा अच्छा बंगलो हो, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमता है, परंतु जब गर्भ में वो गर्भ एक ऐसा मल मूत्र का थैला है जहाँ पर सबको कष्ट भोगना पड़ता है और सबको बीमारी का कष्ट भोगना पड़ता है, बुढ़ापे का कष्ट भोगना पड़ता है, अंतिम उसकी मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ता है। हर एक जीव संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों को भोगता है, आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक कष्टों को झेलता है और बाकी जो कर्मों के अनुसार उसे रोग मिलते हैं या जो कंटिन्यूस उसको उसके ऊपर दुख होते हैं वो तो अलग है, लेकिन ये सात दुख तो पैकेज में आते हैं हमारे साथ। तो यहाँ पर कुंती महारानी कहती है भविष्मिन् क्लिश्यमानानां, और क्लिश्य का कारण क्या है? कारण बता रही कहती है अविद्या। अविद्या का मतलब होता है कि जीव वास्तव में अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। वास्तविक स्वरूप क्या है जीव का? वो भगवान का अंश है और भगवान का दास है, उसे भगवान की सेवा करनी है, परंतु वास्तविक स्वरूप का अज्ञान हो जाता है। और विस्मरण, विस्मरण नहीं हो जाता है बल्कि अस्मरण हो जाता है। शुरू से उसे याद ही नहीं आ रहा है कि मैं भगवान का दास हूं। तो कंटिन्यूअस वो क्या करता है, संसार में आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन वास्तव में क्योंकि वो भगवान का अंश है तो उसे भगवान की भक्ति के अतिरिक्त, भगवान के नाम के अतिरिक्त, भगवान की सेवा के अतिरिक्त आनंद आना संभव नहीं है। लेकिन अविद्या के कारण, अब अविद्या हो जाती है, वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। और नेक्स्ट क्या बोल रही है, काम। अविद्या के कारण क्योंकि उसको देहात्म बुद्धि हो जाती है कि मैं ये शरीर हूँ, वास्तविक स्वरूप जो आत्मा है, भगवान का अंश है, वो भूल गया। अब क्या याद आता है कि मैं यह शरीर हूँ। तो इस शरीर को पालने के लिए, पोसने के लिए, इस शरीर को संतुष्ट करने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए काम, काम मना ये चाहिए, वो चाहिए, इसे प्राप्त करना है, उसे प्राप्त करना है, ये ऐसा घर चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसा बंगलो चाहिए, ऐसा पुत्र चाहिए, ऐसा पति चाहिए, चाहिए चाहिए काम। क्यों? पहला उसका प्रॉब्लम क्या था, अविद्या, और उसके बाद देहात्म बुद्धि में आकर काम में पड़ गया। और काम के कारण क्योंकि अब इच्छा बहुत ज्यादा उत्पन्न हो गई, तब क्या कर्म भी, फिर उसे कार्य करना पड़ता है। और कार्य किसका कारण बनता है, कर्म बंधन का कारण बनता है। प्रकृति का नियम है कि आप जो भी कार्य करोगे उसका कोई ना कोई रिएक्शन मिलेगा आपको, है ना, कर्म का प्रतिफल मिलेगा, और उसके कारण बारंबार आपको जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्लिश्यमानानां, कुंती महारानी कह रही है भवेस्मिन क्लिश्यमानानां, अर्थात यह संसार चक्कर जो है वो इस प्रकार कष्ट भोगने के लिए रिपीट होता जाता है। क्या रिपीट कैसे हो रहा है, सबसे पहले अविद्या, ठीक है, जीव जो है वो अपनी वास्तविक स्थिति को बोल जाता है, फिर देहात्म बुद्धि में आकर काम, इच्छा करता है, ये चाहिए वो चाहिए, काम के कारण कर्म करना पड़ता है, और कर्म के कारण बंधन में बनता है। ये सारा जो भी उसको जन्म मिला है, उस सारे शरीर के अंदर जो 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 कर्म कर रहा है, अविद्या के कारण इच्छा, इच्छा के कारण कर्म, और पूरा अपना जीवन खत्म कर देता है, मृत्यु हो जाती है। फिर दूसरा जन्म मिलता है, उसमें भी यही अविद्या, देहात्म बुद्धि, काम, फिर कर्म, उसके बाद मृत्यु, उसके बाद वापस से दूसरा जन्म, फिर अविद्या, काम, कर्म, और उसके बाद मृत्यु, फिर दूसरा जन्म। तो ये रिपीट होता है, होता है, होता है। अब कोई ऐसा कहे कि भाई मुझे तो पता नहीं है कि मेरा ये पहला जन्म है या दूसरा जन्म है, मुझे तो पिछले जन्म के कष्ट याद नहीं है, या पता नहीं है मुझे कि मुझे पिछले जन्म में मिले थे या नहीं मिले थे, तो किसी को पता ना हो तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि वो दुख है ही नहीं। जैसे अब मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ जिससे समझ में आता है आपको। एक बलि का बकरा जब उसको काटा जा रहा होता है तो उसके साथ में दूसरा भी एक बकरा खड़ा होता है, उसको पता, मतलब उसको पता नहीं है कि अब इसके बाद मेरी बारी आएगी, लेकिन उसको पता नहीं है या उसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है भले ही, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना है कि उसकी बारी आएगी नहीं। आज हम देख रहे हैं करोड़ों लोग जन्म ले रहे हैं, कष्ट भुगत रहे हैं, करोड़ों लोग बीमार होकर कष्ट भुगत रहे हैं, करोड़ों लोग बूढ़े होकर कष्ट भुगत रहे हैं, और करोड़ों लोग की मृत्यु हो रही है, परंतु हम अगर ये सोच रहे हैं कि भाई हमारी बारी नहीं आएगी, हमें ऐसा दुख नहीं मिलेगा, तो फिर ये तो अविद्या है ना। इसका मतलब ये थोड़े ना है कि हमें अगर याद नहीं है, भूल गए हैं, या हमें पता नहीं है तो वो कष्ट ही नहीं है। संसार कष्ट का घर है, उसे कष्ट जो भी जीव आया है उसे भोगना ही है। तो बुद्धिमान तो समझ जाते हैं कि हम वाकई में ये सारा संसार जो है वो कष्टमय है, तो हमें क्या करना चाहिए, इस कष्टमय संसार से बाहर निकलने का तरीका खोजना चाहिए। और इस कष्टमय संसार से बाहर निकलने का तरीका बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल से हम इससे निकलेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम सपना देख रहे हैं, सपने में एक अलग देह होती है और उसके अनुसार हमारी इच्छाएं भी होती हैं, तो वास्तविकता तो अलग होती है क्योंकि वास्तव में हम वो होते नहीं है जो सपने में दिख रहे, और हम उस वास्तविकता को बिल्कुल भूल जाते हैं। उसी प्रकार अनादिकाल से हम अपनी वास्तविकता को भूले हुए हैं। तो कुंती महारानी यही कह रही हैं कि इस कि ये जो सारे जीव हैं वो सब अज्ञान के कारण अपनी वास्तविकता को भूल गए हैं। अब देखिए, किसी को हम बोलते हैं कि भाई आप भगवान के पवित्र नाम का जप कीजिए, भागवतम को श्रवण कीजिए, तो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं श्रवण करते हैं, क्यों नहीं जप कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने आप को देह मान रहे हैं और सोच रहे हैं कि अभी हम अपने देह का ख्याल रखें, इसके जो कर्तव्य हैं उनको पूरा करें, हमें हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें ये सारे कार्य करने हैं। अब हम इतने सारे कार्य करें या बेड के बेड या भागवतम श्रवण करने के लिए या फिर जप करने के लिए, ये क्यों इनके मन में आता है? क्योंकि वो अपनी वास्तविकता को याद नहीं कर पा रहे हैं। हम कौन हैं? यदि किसी जीव को ये याद हो जाए ना, तब तो वो भगवान की भक्ति करे बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि वो वास्तव में जान गया कि मेरा कल्याण इसके अतिरिक्त कहीं नहीं होगा, मुझे आनंद इसके अतिरिक्त कहीं नहीं आएगा, क्योंकि मेरी वास्तविकता यही है। लेकिन क्योंकि वास्तविकता भूल जाता है तो फिर भगवान के पवित्र नाम में, भगवान की कथाओं में उसे बिल्कुल आनंद नहीं आता है। जैसे कोई सपना देख रहा है तो वो सपने में अपने देह के अनुसार खाए पिए और आनंद करे और ये भूल जाए कि मेरा वास्तविक ये स्थिति, मेरी वास्तविक मैं नहीं हुई है, और वो बस सपने में ही आनंद करा। यदि वो सपने में ही अपने आनंद को वास्तविक आनंद मानता है, तो उसी सपने में यदि कोई उसका सर काट ले, तो फिर वहीं पर सपने में वो देख भी रहा है कि किसी ने मेरा सर काट दिया है, और वो हाय हाय करने लगता है, रोने लगता है, बहुत दुखी हो जाता है, या फिर सपने में उसका कोई सगा संबंधी मर जाता है तो उसके लिए दुखी हो रहा है। वो दुखी ही रहेगा। कब तक दुखी रहेगा? जब तक जगेगा नहीं। जब तक जगेगा नहीं तब तक दुख दूर नहीं होगा, उसे अपने स्वरूप में आना पड़ेगा। जब कोई उसे जगा कर ये बताएगा कि आप जागो, ये वास्तविकता नहीं है, आप क्यों रो रहे हो, वास्तव में आपके घर में कोई भी ऐसा टेंशन नहीं हुआ है, आपको कुछ नहीं हुआ, आपके पति को कुछ नहीं हुआ, आपकी पत्नी को कुछ, आपकी संतान सब सुरक्षित हैं, जब उसको जगाएंगे, उसको बताएंगे, तभी उसका कष्ट दूर होगा। इसीलिए कुंती महारानी कह रही हैं कि भविष्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म भी, कि इस संसार में सब लोग अविद्या के कारण इच्छा करते हैं और इच्छा के कारण कर्म करते हैं और इसी में वास्तविक सुख ढूंढते हैं, परंतु श्रवण स्मरण अर्हाणि, श्रवण मतलब उन्हें सुनना पड़ेगा, उन्हें पुनः याद करना पड़ेगा, स्मरण के श्रवण स्मरण। जब जीव इस विधि को अपनाएगा उसके बाद उसे अपना वास्तविक स्वरूप याद आएगा। जैसे किसी सोए हुए जीव को हम याद कराते ना, जगाते हैं, उसी प्रकार भगवान जो है अपनी ऐसी लीलाएं करते हैं संसार में आकर कि जिसको सुनकर और जिसको स्मरण करके जीव अपनी वास्तविकता को समझे। और आर्हाणि का क्या मतलब होता है? श्रवण स्मरण आर्हाणि, इसका मतलब होता है योग्य। इसका अर्थ है इस संसार में जो लोग हैं उनकी कार्य कलाप, जितने भी दूसरे लोग हैं वो जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी मतलब कर रहे हैं, वो सब सुनने योग्य नहीं है। वास्तव में इस संसार में यदि कुछ सुनने योग्य है तो भगवान की लीलाएं हैं। अब इस संसार में लोग क्या करते हैं? कृष्ण लीला के अतिरिक्त और सब कुछ सुनने के लिए तैयार है। क्या सुनेंगे? किसी की निंदा सुनेंगे, उसने क्या किया, वो लड़की क्या कर रही थी, वो लड़का क्या कर रहा था, वो उसने क्या किया, उसके माता पिता ने क्या किया, वो इतना इंटरेस्टिंग लगता है। भौतिक लोगों का कोई कार्यकलाप किसी को सुनाओगे ना तो उनको पसंद लगेगा और उनको ऐसा भी नहीं लगेगा कि समय कितना हो गया। लेकिन कृष्ण कथा वो समय देख रहे होंगे, 9:30 बजे तो कथा खत्म हो, यानी कि किसी तरह से ये भगवत चर्चा लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं और भौतिक लोगों के विषय में बहुत बहुत सुनना पसंद करते हैं। अभी श्रवण और कीर्तन करने योग्य जो कार्य है वो भगवान आए इस संसार में और वो करके चले गए और वेदव्यास जी ने उसको लिपिबद्ध भी कर दिया। तो जब तक जीव इन लीलाओं को सुनेगा नहीं, जब तक इन लीलाओं को जीव को सुनाया नहीं जाएगा, जब तक याद नहीं कराया जाएगा, तब तक जीव की निद्रा टूटने वाली नहीं है। और जब तक जीव को ये दिखाया नहीं जाएगा कि कृष्ण हमारे परम प्रिय हैं, कृष्ण ही हमारे बंधु हैं, हम उन्हीं के हैं, वो हमारे, जब तक जीव इस संसार का आग्रह छोड़ेगा नहीं, ये वास्तविकता है, ये निश्चित है कि वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। उसको सुखी होने के लिए, इस इनक्लिश्यमाना नाम कष्टों से बचने के लिए भगवान के विषय में श्रवण करना पड़ेगा। और इसीलिए भगवान इस संसार में, इसलिए कुंती महारानी कहती हैं कि कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, आप इसलिए लीलाएं करते हो ताकि जीव जो कि दुखों से बहुत ज्यादा पीड़ित है इस संसार में, तो वो वास्तव में आपके विषय में श्रवण करे, आपके विषय आपको स्मरण करे, आपकी पूजा करे, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले भद्र जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त करें। क्योंकि जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, इसलिए ऐसे लोगों को पुनः अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति कराकर, वास्तविक स्वरूप में लाकर उसके वास्तविक प्रेमी से मिलाना है। क्योंकि जीव जो है, जब तक अपनी वास्तविकता को नहीं भी जानेगा, तब तक वो किसी न किसी से प्रेम अवश्य करेगा। क्योंकि वास्तविक में वो प्रेमी है, उस जीव को प्रेम करना ही आता है। अब प्रेम क्योंकि अविद्या के कारण ऐसी वस्तु से कर बैठता है जहाँ से उसे केवल दुख मिलेगा, क्योंकि भौतिक वस्तुओं से उसका कोई मेल नहीं है। जीव अनादि है और उसे अनादि कृष्ण से ही प्रेम करना पड़ेगा, तभी वो संतुष्ट हो सकता है। भौतिक में समस्त वस्तुएं जो है, जो कुछ भी व्यक्ति हो चाहे वस्तु है, वो क्या है, नाशवान है। और जीव शाश्वत है, तो उसे प्रेम करने के लिए शाश्वत प्रेमी की आवश्यकता है। तो ये तो उसे बताने के लिए भगवान को कुंती महारानी कहती आप आते हो। मानो भगवान यहाँ पर पूछ रहे हैं कि बुआ जी, आप इतने सारे मत मेरे आने के बता रहे हैं, तो इसमें से सबसे अच्छा मत आपको कौन सा लगता है? मतलब सब तो ठीक ही है, यानी कि इसमें कोई गलत तो है ही नहीं कि मैं किसी को कैसा लगता है कि मैं वासुदेव की और देवकी की प्रार्थनाओं के लिए आया हूँ, किसी को लगता है भार उतारने के लिए आया हूँ, किसी को लगता है कि मैं ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आया हूँ, किसी को लगता है दुष्टों का विनाश करने के लिए और संतों की रक्षा करने के लिए आया हूँ, परंतु आपको इनमें सबसे अच्छा कौन सा लगता है? तब कुंती महारानी उत्तर देती हैं, कहती हैं कि हमें भी यही मत सबसे श्रेष्ठ लगता है कि आप श्रवण आदि का भक्ति देने के लिए, श्रवण अपने विषय में, ताकि आपकी लीलाओं के विषय में सब सुनेंगे और सबका कल्याण होगा, इसीलिए आप इस संसार में आते हो, जीवों का कल्याण करने के लिए ही आते हो। क्योंकि अगर भगवान को वसुदेव और देवकी की प्रार्थना कबूल करनी थी तो वो किसी भी तरह से कर सकते थे, अगर उनको पृथ्वी का भार उतारना है तो उनको इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं है, वो वहीं पर बैठे बैठे पृथ्वी का भार उतार सकते हैं। यदि दुष्टों का विनाश करना है तो भगवान को आने के संकल्प मात्र से दुष्ट मर सकते हैं, और अगर परित्राण साधु नाम करना है तो भी उनके लिए संसार में आने की आवश्यकता नहीं। वास्तव में वो आते हैं, इतनी आश्चर्यमय लीलाएं करते हैं ताकि जीव जो सुने तो उनके हृदय में भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न हो सके। इसी कुंती महारानी श्रवण आदि का फल बता रही और कहती हैं कि श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णश स्मरन्ति नन्दन्ति तावि हितं जन एव पश्यन्त्य चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजं श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णश स्मरन्ति नन्दन्ति तावि हितं जना त एव पश्यन्त्य चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजं श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्मशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवि हितं जना तवि त एव पश्यन्त्यचिरेणतावकं भव प्रभावो भव प्रभाहो परमं पदाम्बुजम् श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्मन्ति श्रवन्ति अर्थात सुनने से गायन्ति अर्थात कीर्तन करने से गृह्णन्ति अर्थात ग्रहण करने से अभीक्ष्मशः अर्थात निरंतर यानी कि जब कोई जीव कंटिन्यूस भगवान के विषय में श्रवण करता है उनके उनके नाम का कीर्तन करता है उनकी कथाओं का उनके विषय में गान करता है उनको ग्रहण करता है अभीक्ष्मशः अर्थात इसमें ये नहीं है कि एक दिन करो दूसरे दिन नहीं करो तीसरे दिन कंटिन्यूस नित्यम भागवत सेवया वेद व्यास जी ने पहले ही बोल दिया कि भागवतम नित्य करने की चीज है कंटिन्यूस करने की चीज है स्मरन्ति भगवान को कंटिन्यूस स्मरण करना भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्ताना कंटिन्यूस भजताम प्रीति पूर्वकम जो प्रेम से मेरा भजन करते हैं धरामि बुद्धि योगम तम उन्हीं को मैं प्राप्त होता हूँ ऐसी बुद्धि प्राप्त कराता हूँ धरामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते जिससे वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं अब कैसे तेषां सतत युक्ताना भजता वो कैसे भजन करेंगे जब वो श्रवण करेंगे जब आपकी लीलाओं को स्मरण करेंगे जब उनके उनको गाएंगे गुनगुनाएंगे बोलेंगे उनके विषय में तब कंटिन्यू स्मरण कर सकेंगे ना इसीलिए कुंती महारानी कह रही हैं श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्ष्मशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना तवे हितम अर्थात आपके कार्यकलाप जो आपने लीलाएं की हैं उन्हीं के विषय में तो श्रवण करना है उन्हीं का तो कीर्तन करना है अगर आप संसार में आते ही नहीं संसार में कोई लीला करते ही नहीं तो आपका तो कोई अस्तित्व नहीं होता इस ये क्या सिद्धांत कहाँ पर आके अगर कोई जीव आपके विषय में श्रवण करेगा तो क्या श्रवण करेगा बस यही कि वो निराकार है निराकार की तो कोई लीला ही नहीं होगी निराकार से कोई प्रेम कैसे कर सकता है और इसीलिए कुंती महारानी कहती हैं कि जो आपकी लीलाओं को श्रवण करते हैं गाते हैं कंटिन्यू स्मरण करते हैं अनुमोदन करते हैं आपकी लीलाओं को और वही त एव पश्यन्ति त एव का मतलब होता है केवल वही पश्यन्ति यानी केवल वही आपको देख सकते हैं यानी कि भगवान को देखने के लिए श्रवण करना है पहले पहले यदि हम श्रवण करेंगे भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे भगवान को देखने के लिए ये चरम चक्षु काम आने वाली नहीं है भगवान को देखने के लिए भगवान के विषय में श्रवण करना पड़ेगा और यही कला यहाँ पर कुंती महारानी हमें सिखा रही हैं कि जो आपके विषय में श्रवण करेगा गाएगा स्मरण करेगा त एव पश्यन्ति अचिरेण अचिरेण का मतलब होता है बहुत ही जल्दी बहुत ही शीघ्र जो भगवान के विषय में श्रवण करेगा प्रेम से उनके पवित्र नाम का जप करेगा तो बहुत ही शीघ्रता से भगवान के दर्शन तावकम यानी आपका दर्शन होगा उसे वास्तव में आपको अगर देखना है तो भगवान के विषय में श्रवण करना है भगवान की पवित्र लीलाओं को और भगवान के पवित्र नाम को गायन करना है उसको सुनना है स्मरण करना है अनुमोदन और जहाँ नंदंती का मतलब होता है कि हर्षित होना है जैसे अगर हम खुद नहीं जा सकते हैं अगर हम खुद कथा नहीं कर सकते हैं या लेकिन बड़े बड़े आयोजन होते हैं जैसे भागवत सप्ताह होता है तो आप ना वहाँ उसके लिए अगर धन है किसी के पास तो उसके लिए आयोजन कर सकता है माइक की व्यवस्था करना प्रसाद की व्यवस्था करना तो ऐसे कार्य करने से क्या होता है त एव पश्यन्ति चिरेण तावकम् बहुत ही जल्दी से हम भगवान को भगवान के दर्शन होते हैं और भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् और इस तरह से जन्म मरण का बंधन भव प्रवाह का मतलब है बार बार ये जो जन्म धारा है ना कि एक एक जन्म खत्म होता है मृत्यु होती है फिर दूसरा जन्म फिर तीसरा जन्म बारंबार जन्म मरण की जो श्रृंखला है वो बंद हो जाती है, अपरमम यानी कि वो खत्म हो जाती है, पराम भुजम, और भगवान के शरण कमलों का आश्रय प्राप्त होता है। अनुवाद, हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मरण के प्रवाह को रोकने वाला है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण हमारे भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते हैं, उनका दर्शन पाने के लिए मनुष्य को भगवान के स्वजात प्रगाढ़ प्रेम से युक्त भिन्न प्रकार की जीवन अवस्था उत्पन्न करनी होगी। जब श्री कृष्ण इस धराधाम में सर शरीर विद्यमान थे तो सभी लोग उन्हें भगवान के रूप में नहीं देखते थे। रावण, हिरण्याकशिपु, कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे भौतिकतावादी भौतिक संपत्ति अर्जित करके अत्यंत ही योग्य महापुरुष बन गए थे, लेकिन वे भगवान की उपस्थिति को समझ पाने में असमर्थ थे। अतएव भले ही भगवान हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित क्यों ना हो, जब तक हमारे पास उपेक्षित दृष्टि नहीं होती है तब तक उनको देख पाना असंभव है। यह उपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्ति योग द्वारा ही उत्पन्न होती है, जिसका शुभ आरंभ उचित स्रोत से भगवान के विषय में श्रवण करने से होता है। श्रीमद् भगवद गीता ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ है जिसे सामान्य लोग सुनते हैं, गाते हैं तथा बारंबार पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि ऐसी भक्ति संपन्न करने वाला व्यक्ति भगवान का दर्शन नहीं कर पाता। इसका कारण यह है कि श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि सही स्रोत से श्रवण किया जाए तो इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। सामान्यतः लोग अवैध पुरुष से श्रवण करते हैं। ऐसे अवैध व्यक्ति शैक्षणिक योग्यताओं में भले ही प्रकांड पंडित हो, लेकिन भक्ति के सिद्धांतों का पालन न करने के कारण उनसे श्रवण करना समय का अपव्यय है। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यदि भगवान को समझना है तो श्रवण पहली विधि है, लेकिन श्रवण किससे करना है ये अवश्य देखना चाहिए। इसको यदि कोई बहुत बड़ा स्कॉलर हो, बहुत बड़ा पंडित हो, उसको बहुत बहुत गीता के श्लोक सारे याद हो और उसको बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें बता रहा है, लेकिन यदि वो भक्त नहीं है, यदि वो भगवान से प्रेम नहीं करता, तो कभी भी आपको भगवान के दर्शन नहीं करा सकेगा। इसलिए हमें योग्य व्यक्ति से श्रवण करना चाहिए। अतएव सर्वप्रथम सक्षम तथा योग्य वाचक यानी वक्ता चुनकर ही श्रवण करना चाहिए। जब श्रवण विधि पूर्ण हो जाती है तो अन्य विधियां स्वतः ही पूरी हो जाती है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर पहला ये कार्य सही कर दिया ना, आपने श्रवण सही व्यक्ति से किया, तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम कोई भी नहीं होगी, बाकी सारी विधियां ठीक हो जाएंगी, कीर्तन स्मरण सब से ठीक हो जाएगी। तो आप लोग को ऐसा लगता होगा कि भाई हम पता नहीं सही व्यक्ति से श्रवण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैं दिख रही होंगी ना, लेकिन वास्तव में क्या है, आप शास्त्र से श्रवण कर रहे हो। श्रील प्रभुपाद के वर्ड में आपको पढ़ के बताए, तो इसका मतलब है मैं इसमें ना तो कुछ निकाल रही हूँ और ना ही अपनी तरफ से कोई भौतिक कचरा डाल रही हूँ। एज इट शब्दों को मैं आप पर पहुंचा रही हूँ और जो लिखे हुए हैं वेदव्यास जी के शब्द उनको सिर्फ ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो एज इट इज यदि आपको कोई पढ़ के बताता है तो फिर हमें संदेह नहीं होना चाहिए कि हम पता नहीं सही। जो एज इट इज नहीं पढ़ के बताता है, जो वो हमें समझाता नहीं है, जो कि लिखा हुआ है उसका सार तत्व नहीं देता ना, तभी संदेह होना चाहिए। किसी से जब हम सुन रहे हो तो हमें शास्त्र को इस तरह से देखना चाहिए कि क्या ये इससे मैच कर रही है बात। यदि इससे मैच कर रही है, शब्दों से मैच कर रही है, वही एज इट इज हमें बताया जा रहा है, फिर तो आपको संदेह नहीं होना चाहिए। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ये भगवान के अनेक दिव्य कार्यकलाप हैं और यदि श्रवण विधि परिपूर्ण हो तो इनमें से हर एक से वांछित फल प्राप्त हो सकता है। जो भी भगवान के कार्यकलाप है उनको यदि हम किसी पात्र व्यक्ति से, सुपात्र से सुनेंगे तो वांछित फल प्राप्त होगा। भागवत में भगवान के कार्यकलाप पांडवों के साथ उनके आचरण से प्रारंभ होते हैं। असुरों तथा अन्यों के साथ बर्ताव से संबंधित भी भगवान के अनेक कार्यकलाप हैं। दसवें स्कंद में उनकी प्रिय गोपिकाओं के साथ तथा द्वारिका में उनकी अपनी पत्नियों के साथ व्यवहार का वर्णन है। क्योंकि भगवान ब्रह्म है अतएव उनके प्रत्येक व्यवहार की दिव्यता में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कभी कभी लोग अवेद्य श्रवण करते समय गोपियों के साथ भगवान के व्यवहार यानी क्रीड़ाओं में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसी मनोवृत्ति श्रोता के कामुक विचारों का सूचक है। यानी यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं यदि शुद्ध भक्त से नहीं सुनेंगे ना तो भगवान के कार्य जो कि दिव्य हैं, भगवान का संबंध जो कि दिव्य है, तो हमें ऐसा लगेगा भौतिक लड़का लड़की जिस तरह से प्रेम करते हैं ऐसा ही हमें लगेगा। लेकिन यदि शुद्ध वैष्णव हमें बताएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये भगवान है, जो कुछ भी है वो सब उनसे ही प्रकट हुआ है। भगवान के अंदर कोई काम वासना नहीं है, बल्कि भगवान जीव को क्या सिखा रहे हैं कि आप भगवान के साथ इतना माधुर्य रस भी अगर चाहो, जीव अगर इच्छा करे तो भगवान के साथ माधुर्य प्रेम भी कर सकता है। कि कोई अगर संबंध आपको स्थापित करना है, चाहे माता का करना है, चाहे बंधु का करना है, चाहे सखा का करना है, चाहे दास्य का करना है, या चाहे प्रीतम का, कोई भी संबंध अगर हम चाहे भगवान के साथ निर्माण कर सकते हैं, ये कोई काम वासना नहीं है। क्योंकि इस संसार में अगर कोई स्त्री पुरुष में कोई रिलेशन होता है तो उसको वो काम होता है, लेकिन इस संसार में जो कुछ भी है वो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। लेकिन क्योंकि हम शुद्ध वैष्णव से नहीं सुनते हैं तो हमें भगवान की लीलाएं भी काम वासना वाली लगती हैं। अतः भगवान की क्रीड़ाओं का प्रामाणिक वक्ता कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनाता, ऐसे नहीं बताता। मनुष्य को चाहिए कि प्रारंभ से ही श्रीमद् भागवतम का या अन्य शास्त्रों से भगवान के विषय में श्रवण करे। इससे श्रोता को उत्तरोत्तर पूर्णता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। डायरेक्ट से अगर हम सुनेंगे ना सीरीज में तो फिर हम भगवान को पहले समझ जाएंगे। जब आप किसी एक व्यक्ति को समझ जाओ फिर उसके कार्यकलाप को समझना बहुत आसान है। लेकिन अगर आप व्यक्ति को नहीं समझ रहे हो तो फिर वो कार्य जो कर रहा होगा तो उसमें आपको संदेह होगा। जैसे अगर कोई डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो सर्जरी कर रहा है, किसी का पेट काट रहा है, और आपको खबर नहीं है कि वो डॉक्टर है, आपने उसको देख लिया कार्य करते हुए, तो आप क्या सोचोगे, ये कितना निर्दयी है, ये किसी का पेट काट रहा है, उसको मार डालेगा, और बाद में आप देख रहे हो वो कैसे उसका ऑपरेशन कर रहा है वो। लेकिन अगर आपके पास पहले अक्कल होगी, पहले आपको ज्ञान होगा, आप समझ जाओगे कि ये डॉक्टर इसको मारने के लिए नहीं बल्कि इसको बचाने के लिए कर रहा है, फिर आपको उसके ऊपर संदेह नहीं होगा। इसे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें सीरीज में सुनना चाहिए, श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना चाहिए, उसके बाद भगवद गीता को पहले श्रवण करना चाहिए और भागवतम को भी सीरीज में पहला स्कंद और इस तरह से सुनना चाहिए। इससे श्रोता को उत्तरोत्तर पूर्णता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अतएव किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि पांडवों के साथ भगवान के आचरण गोपियों के साथ किए गए आचरणों यानी क्रियाओं से कम महत्वपूर्ण है। हमें यह सदा स्मरण करना चाहिए कि भगवान समस्त संसारी आसक्ति से परे रहने वाले हैं। उपर्युक्त समस्त आचरणों में वे नायक हैं और उनके विषय में या उनके भक्तों या उनके प्रति योद्धाओं के विषय में श्रवण करना आध्यात्मिक जीव के लिए लाभप्रद है। कहा जाता है कि सारे वेद पुराण आदि भगवान से हमारे भूले संबंधों को पुनर्जीवन करने के लिए हैं। इन सभी शास्त्रों को सुनना आवश्यक है। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शास्त्र इसीलिए है कि इसमें जो भगवान की लीलाएं हैं, वो भगवान ने जो जो किए हैं कार्यकलाप, वो हमें बताने के लिए, हमें फिर से जगाने के लिए, अपने वास्तविक स्वरूप को याद करने के लिए ये सब भगवान ने कार्य किए हैं, तो उनको हमें श्रवण करना चाहिए और किसी वास्तविक जो शुद्ध भक्त हैं उनसे श्रवण करना चाहिए और उसके बाद उसको गाना चाहिए, यानी एज इट इज बताना वापिस सबको चाहिए, और इस तरह से स्मरण करना चाहिए भगवान का, अनुमोदन करना चाहिए। और इस तरह से क्या होगा, पश्यन्ति चिरेण तावकम्, बहुत ही जल्दी हम भगवान के दर्शन कर सकेंगे। भाव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम, और इस भौतिक जगत के झमेलों से छूटकर वास्तव में भगवान के चरण कमल का हमें सानिध्य प्राप्त होगा। तो अत्यंत ही सुंदर कुंती महारानी बता रही हैं कि यही सिद्धांत यहाँ पर आकर स्थित, यानी एकदम ठीक बताया जा रहा है कि भगवान भले वासुदेव के पुत्र हैं वो तो ठीक है, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आए हैं वो भी ठीक है, पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हैं वो भी ठीक है, असुरों का वध करने के लिए आए हैं निश्चित रूप से ठीक है, भक्तों की रक्षा करने के लिए आए वो तो बिल्कुल सही है, परंतु वास्तव में भगवान ये सारे कार्य अपने धाम में बैठकर भी कर सकते हैं, परंतु दुखी जीवों पर कृपा करके उनके गाने योग्य, उनके सुनने योग्य, उनके स्मरण करने योग्य लीला करने के लिए वास्तव में भगवान इस संसार में आए हैं, ये सबसे अधिक ठीक है। अब वो व्यक्ति कितना बड़ा अभागा होगा जो कृष्ण के विषय में श्रवण नहीं करता, कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करने का जिसके हृदय में इच्छा नहीं होगी, गाएगा नहीं, गुनगुनाएगा नहीं, तो फिर वो कभी भी भगवान को के दर्शन नहीं कर सकता। अब देखिए भगवान की व्यवस्था, भगवान कितने परम कृपालु हैं और यहाँ माया बद्ध दुखी जीवों का हित करने के लिए संसार में आए, और भगवान को पृथ्वी का भार उतारने के लिए संसार में आने की आवश्यकता नहीं थी, बाकी सारे कार्य तो वो संकल्प मात्र से ही कर सकते थे, लेकिन जब भगवान इस जगत में आकर लीलाएं करेंगे तो क्या कोई उनके बारे में बोलेगा, उनके बारे में श्रवण करेगा? अगर लीला नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं बचा ना, बोलने और श्रवण करने की बात क्या है, भगवान के विषय में यदि बोलना है, निराकार यदि है तो उसके बारे में कोई क्या बोलेगा, सारे ज्ञान की इति श्रीमत यहीं तक हो गया कि बस वो निराकार है, तो कौन भगवान से प्रेम करेगा, कौन भगवान के विषय में गाएगा, कौन भगवान की बात करेगा? अगर जैसे यहाँ पर आपकी किसी की पत्नी हो और कहा जाए कि भाई आपकी पत्नी आज से निराकार हो गई है, सुनते ही रोना आ जाएगा कि उसका आकार समाप्त हो गया, अब उसके बारे में क्या चिंतन करूं, और वापिस से उसके आकार का चिंतन करेगा, और कुछ समय के बाद तो प्रेम समाप्त हो जाएगा क्योंकि उसका आकार ही नहीं है, तो प्रेम ही समाप्त हो जाएगा। और उसी तरह से जिन लोगों के मन में ये धारणा है कि भगवान निराकार हैं, ऐसे ही मूढ़ों को सिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए भगवान इतनी मधुर लीलाएं करते हैं और कहते हैं कि ये कहो, इन लीलाओं के विषय में बात करो, इन लीलाओं के विषय में सुनो तो तुम ठीक हो जाओगे, और ये उद्देश्य लेके इस संसार में भगवान आते हैं, जीवों को श्रवण करने योग्य लीलाएं बताने के लिए। शास्त्र में भी लिखा गया है कि साधु महात्मा कहते हैं यही कि भगवान की लीलाओं के विषय में, सारे भागवतम को खोल के देखें, भगवान की विभिन्न लीलाएं हैं, जितने भी संत साधु हैं वो भगवान की लीलाएं करते हैं, फिर भी लोग नहीं सुनते हैं, फिर भी लोग इन लीलाओं को श्रवण करने में आसक्ति नहीं रखते हैं, तो क्या किया जाए? जैसे कि आप घोल के पिलाएं उनको, क्या करें, अब क्या कर सकते? जैसे किसी को भोजन दिया जाए, उसके लिए भोजन बनाया जाए और वो बोले कि नहीं मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई है आप मुझे मुंह में डालो, तो निवाला बना के उसके मुंह में भी डाले तो भी अगर वो चबाए नहीं तो जाहिर है क्या हम ऐसे बोलेंगे कि अब तुम्हारे खातिर हम चबाए भी? चबाना तो तुमको पड़ेगा ना, अगर आप चबाओगे नहीं तो फिर आपको आनंद नहीं आएगा। उसी तरह से ये भगवान ने इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं की, वेद व्यास जी ने उनको लिपिबद्ध किया, श्री प्रभुपाद जी ने इनका तात्पर्य बताया, और मैं आपको पढ़ के भी बता रही हूँ, और फिर कुछ लोग नहीं श्रवण कर रहे हैं तो फिर क्या किया जाए? वेद व्यास जी कहते हैं, पिवत भागवतम रसमालयम, ये ग्लास रस का भरकर तुम्हारे मुंह पे रख दिया है, पिवत पियो इसको, लेकिन वो आदमी अभी वो रस लेना नहीं चाहता है, सुनना नहीं चाहता है। अब देखो कोई कोई लोग ऐसे बोलते थे कि अभी ना हमारे पास समय नहीं होता है जाने का आने का, किधर जाके श्रवण करें, लेकिन अब तो घर बैठे सुनाया जा रहा है फिर भी नहीं सुनते हैं, ये रस नहीं इसमें आ रहा है। और कोई रस आ रहा है, बीड़ी पीने का रस आता है, सिगरेट पीने का रस आता है, शराब पीने का रस आता है, या दूसरे दूसरे वस्तुओं का, या फिर जैसे संसारी जीव जो है वो और सारी चीजें पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ने में उनको सुबह सवेरे न्यूज़पेपर चाहिए, नशा हो गया। डाइजेस्ट पढ़ेंगे, कादंबरियां पढ़ेंगे, और उल्टे सीधे मैसेजेस पढ़ेंगे, उल्टे सीधे स्टेटस आएंगे वो पढ़ेंगे, लेकिन भागवतम के श्लोक्स, भगवद गीता के श्लोक्स वो नहीं पढ़ेंगे जो एकदम रेडी करके दिया है, पियो पियो, कोई धाम भी नहीं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर भी हाय रे जीव, कोई रुचि नहीं है तो कब सुनेगा, मरने के बाद सुनेंगे क्या? अभी एक भागवत महापुराण है, श्रीमद भगवद गीता है, 700 श्लोक है। किसी भी से भी पूछो, आपने श्रीमद भगवद गीता पढ़ी है? हाथ किस किसने पढ़ी, हाथ ऊपर करो, तो चार दो लोग भी पूरे हाथ ऊपर नहीं करेंगे कि हमने भागवत गीता पूरी पढ़ी। भागवतम के बारे में तो हमारे कितने सारे लोगों ने, उनको पता भी नहीं होगा कि भागवतम में क्या लिखा हुआ है। तो भगवान कृष्ण इस संसार में आए हैं, इसका मुख्य कारण, भगवान का उद्देश्य यही है कि ऐसी लीलाएं करें, ऐसी सी लीलाएं करें जिसको देख करके और सुन करके जीव जो है वो हमारी तरफ आकर्षित हो। इसी रहस्य का उद्घाटन कर रही हैं यहाँ पर कुंती महारानी। और इसका प्रैक्टिकल क्या है, उपाय क्या है कि किस तरह से हम इस श्लोक को प्रैक्टिकल कर सकते हैं। श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति वीक्ष्णश स्मरन्ति नन्दन्ति तावि हितं जनाम। ये श्लोक को हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं भागवतम के श्रवण करने से, क्योंकि भागवतम में भगवान ये जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हम भगवान के विषय में श्रवण कर रहे हैं, भगवान की कथाओं को गा रहे हैं, भगवान की लीलाओं को स्मरण कर रहे हैं, तो उसका फल क्या होगा? वे कहती हैं तएव पश्यन्त्य चिरेण तावक, अति शीघ्र भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। और क्या होगा? भगवान के दर्शन, भगवान के चरण कमलों के दर्शन प्राप्त करने से भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। आपके चरण कमलों का दर्शन करते ही उनके जन्म मृत्यु के प्रवाह रुक जाते हैं, जन्म मृत्यु का जो चक्कर है वो समाप्त हो जाता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी साधना और सेवा को अच्छे से कर सकूं।